आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। लोकसभा इंतखाबात के बकिया दो मरहलों की चुनाव मुहिम में और तेजी आ गई है। सरकर्दा लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर वोटिंग को जमहूरियत का पैमाना करार दिया है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि मरबूत थिएटर कमान से फौज की तैयारी और मुकाबला करने की सलाहियत को तकवियत मिलेगी। सैर व सियाहत के फरोग से मुतालिक आलमी इकतसादी फोरम के इशारे में भारत अब अपनी पोजीशन बेहतर करते हुए 39वें मकाम पर आ गया है। और बैंकॉक में एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारतीय मर्दों और खवातीन की 4x400 मीटर की टीमों ने चांदी के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के बकिया दो मरहलों की चुनाव मुहिम में और तेजी आ गई है। सरकर्दा लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। छठे मरहले की चुनाव मुहिम कल खत्म हो जाएगी। कौमी राजधानी में लोकसभा इंतखाबात की चुनाव मुहिम में और तेजी आ गई है। सभी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा आज इंतखाबी मुहिम में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में इंतखाबी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। जनाब मोदी द्वारका में बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब करेंगे, जबकि जनाब खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज की हिमायत में भलसवा डेरी के मकाम पर एक जलसे आम में शिरकत करेंगे। दिल्ली में 7 पार्लियामानी हलकों के लिए हफ्ते के रोज वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के छठे और सातवें मरहले के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर चुनाव मुहिम में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी बस्ती और श्रावस्ती हलकों में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला और बीजेपी के लीडर योगी आदित्यनाथ जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिले में इंतखाबी मुहिम में शामिल होंगे, जबकि मध्य प्रदेश के वजीर आला और बीजेपी के लीडर मोहन यादव महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। इधर बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती सुल्तानपुर में चुनाव मुहिम में शामिल होंगी, जबकि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले में एक रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है और यह जमहूरियत का एक पैमाना बन रहा है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में जनाब मोदी ने कहा कि कश्मीर में 30-40 साल का वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है। इफरात-ए-ज़र के बारे में जनाब मोदी ने दावा किया कि भारत में महंगाई दीगर मुल्कों के मुकाबले कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई से खुराक, ईंधन और कीमियावी खाद पर सीधा असर पड़ रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि दीगर मुल्कों में किसानों को यूरिया की एक बोरी 3000 रूपये में मिल रही है, लेकिन भारत में किसानों को इसके लिए सिर्फ 300 रूपये देने होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है। लोकसभा इंतखाबात के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अहम हलकों की तफसीलात की सीरीज के तहत आज हम बात कर रहे हैं बिहार के शिवहर पार्लियामानी हलके की। यह हलका 1977 में वजूद में आया था। यहां एनडीए और अजीम इत्तेहाद के दरमियान रास्त मुकाबला है। इस हलके में छठे मरहले के तहत 25 मई को वोट डाले जाएंगे और इसके साथ साथ 7 दीगर लोकसभा हलकों में भी वोटिंग होगी। इस पार्लियामानी हलके में तकरीबन 18 लाख राय दहिंदगान 12 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
शिवहर पार्लियामानी हलका, जहां पिछले 6 इंतखाबात के दौरान बीजेपी और आरजेडी के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा था, अब दोनों इत्तेहादों के लिए एक अहम हलका है। माजी में बीजेपी और आरजेडी दोनों ने शिवहर में 3-3 बार कामयाबी हासिल कर रखी है, लेकिन 2024 के इंतखाबात में बीजेपी ने एनडीए के साथ सीटों के बंटवारे के तहत अपनी साथी पार्टी जेडीयू के लिए ये सीट छोड़ रखी है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट रमा देवी, जिन्होंने 2009 और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इस सीट पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। एनडीए की तरफ से जेडीयू ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट लवली आनंद को मैदान में उतारा है। आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट दिया है। शिवहर की सभी 6 असेंबली सीटों पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है, क्योंकि इनमें से 5 की नुमाइंदगी बीजेपी कर रही है और एक सीट पर जेडीयू का इख्तदार है। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। यहां बागमती दरिया में हर साल सैलाब का कहर बरपा होता है, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। शिवहर में अभी तक रेलवे खिदमात भी नहीं है, जिसका आवाम तवील अरसे से मुतालबा करते रहे हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि मरबूत थिएटर कमांड से मुसल्लह फौजों को फौजी तैयारी और जंग लड़ने के अगले मरहले में दाखिल होने की बुनियाद पड़ेगी। मुश्तरका कारकर्दगी मुस्तकबिल का रास्ता के मौजू पर कल नई दिल्ली में जनरल चौहान ने इश्तराक और इर्तबात को कार्रवाई करने वाली मरबूत थिएटर कमांड्स की तख्लीक के लिए पेशगी जरूरत करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कमांड्स की तख्लीक से सलामती के मामलात के तहत कारकर्दगी की कमान पर मजीद तवज्जो मबजूल होगी। सीडीएस ने कहा कि थिएटर कमांड्स कोई आखिरी अमल नहीं होगा, बल्कि ये इसलाहात के नए मरहले का आगाज होगा।
आई बिलीव इट्स अ काइंड ऑफ एन एनेबलिंग एनवायरमेंट विच क्रिएट सिस्टम ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द थ्री आर्म फोर्सेज सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस ऑफ फियर एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इन अ फ्री एंड फ्रैंक मैनर एंड दिस इज व्हाट आई थिंक जॉइंटनेस इज ऑल अबाउट। इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ कंजीनियल वर्किंग एटमोसफेयर एंड बॉनहोमी अमंग द थ्री सर्विसेज।
दिफा के वजीर ममलकत अजय भट्ट ने कल कहा है कि जोग्राफियाई और सियासी नक्शा हमेशा इर्तिका के अमल में रहता है और मुसल्लह फौजों के लिए यह लाजमी है कि वो अपने तरीकेकार में नए मंजरनामे को अपनाती रहें और इख्तिरा से काम लें। नई दिल्ली में भारतीय दिफाई सकाफत के तारीखी नमूने के मौजू पर मुनाकिदा सेमिनार और नुमाइश के मौके पर जनाब भट्ट ने मुल्क की दिफाई ताकत के एतराफ की अहमियत को उजागर किया, जो न सिर्फ इसकी फौजी ताकत में बल्कि बदलते हुए हालात को अपनाने और ताकत के एक वसीले के तौर पर सकाफती विरासत को फरोग देने की अहलियत में भी पिन्हा है। इस नुमाइश का एहतमाम प्रोजेक्ट उद्भव के तहत किया गया था, जिसका आगाज पिछले साल अक्टूबर में भारतीय फौज के विरासती फेस्टिवल के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया था। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कसीर शोभा जाती तकनीकी और इकतसादी तआवुन के मंशूर के लिए खलीज बंगाल इकदाम बिम्स्टेक को लागू किए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि इससे एक खुशहाल पुरअमन और मुस्तकिल पड़ोस के तहत भारत के अज़्म की तौसीक होती है। उन्होंने कहा कि इस मकसद को एक दूसरे के लिए मुश्तरक तारीख सकाफत दूरंदेशी और बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जा सकता है। डॉ जयशंकर ने मजीद कहा कि बिम्स्टेक से भारत की पड़ोस मुकदम और मशरक नवाजी की पॉलिसियों की अक्कासी होती है। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि बिम्स्टेक मंशूर आज अमल में आ गया है, जिससे खलीज बंगाल खित्ते के बामाना तआवुन और मजीद गहरे इश्तराक के लिए कानूनी और इदारा जाती फ्रेमवर्क फराहम हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे बिम्स्टेक दिलचस्पी रखने वाले दीगर मुल्कों या तंजीमों के साथ इश्तराक कर सकेगा और मुशाहिदीन और नए अरकान को शामिल कर सकेगा। आम आदमी पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून को मुबैना तौर पर अपोजिशन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। कल नई दिल्ली में नामेगारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकर्दा लीडर आतिशी ने कहा कि दिल्ली में मुबैना शराब घपला पार्टी को तोड़ने की बीजेपी की एक साजिश है। पार्टी के सरकर्दा लीडर मनीष सिसोदिया की जमानत की दरखास्त दिल्ली हाईकोर्ट से मुस्तरद होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए आतिशी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सरकार सियासी साजिश तैयार करने के लिए मरकजी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि यह पूरा मामला दबाव में लिए गए बयान पर मबनी है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सैर व सियाहत के फरोग से मुतालिक आलमी इक्तसादी फोरम के 2024 के इशारे में भारत अब अपनी पोजीशन बेहतर करते हुए 39वें मकाम पर आ गया है, जबकि अमरीका सरे फहरिस्त है। इससे पहले भारत 2021 के इशारे में 54वें मकाम पर था। इसके साथ साथ कम और मुतवस्सित आमदनी वाली मईशतों में जनूबी एशिया में भारत आला तरीन मकाम पर है। मस्कूरा दर्जाबंदी में भारत की नुमाया पेशरफ से आलमी सियाहती मंजरनामे पर उसकी बढ़ती हुई मुसाबिकत उजागर होती है। मस्कूरा इशारे में 119 मुल्कों के सैर व सियाहत के शोबे के मुख्तलिफ अवामिल और पहलुओं का जायजा लिया गया है। نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ آج اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کریں گے. اپنے دورے میں وہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان اور دیگر ایرانی افسران کی المناک موت پر انہیں ایک سرکاری تقریب میں تعزیت پیش کریں گے. ان شخصیتوں کی موت 19 مئی کو ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہو گئی تھی. اسی دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کل نئی دلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا اور اس المناک حادثے پر بھارت کی طرف سے تعزیت کا اظہار کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ انہیں بھارت کے ایسے دوستوں پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جنہوں نے بھارت ایران تعلقات کو فروغ دینے میں زبردست تعاون دیا. منی پور میں ریاستی سرکار نے دہشت گرد گروپ کوکی نیشنل فرنٹ ملٹری کونسل کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے. یہ ایف آئی آر اس گروپ کی طرف سے نیا نام رکھے جانے اور اپنے کیمپ کو ایک مقدس پہاڑی میں منتقل کرنے کے خلاف درج کرائی گئی ہے. یہ کیس ایک فوٹوگراف کے سامنے آنے کے بعد درج کرایا گیا ہے جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس دہشت گرد گروپ نے بشنو پور ضلع میں واقع تھانگ جنگ چنگ پہاڑی کے دامن میں ایک سائن بورڈ نصب کیا ہے جس میں اس جگہ کو کوکی آرمی کیمپ بتایا گیا ہے. تھانگ جنگ چنگ میتی برادری کے سناماہزم مذہب کے عقیدت مندوں کے لیے ایک مقدس اور یاترا کا مقام ہے. اسی دوران منی پور کے وزیر اعلی این برینگ سنگھ نے کسی بھی فرد یا گروپ کو خبردار کیا ہے کہ وہ عوامی جگہوں کو غیر قانونی طور پر کوئی نیا نام نہ دیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلی نے کہا کہ اس جگہ کا نام تھانگ جنگ پہاڑی سے بدل کر تھانگ تنگ پہاڑی رکھے جانے کے سلسلے میں ایک پولیس کیس درج کرا دیا گیا ہے. مہاراشٹر میں پونے ضلع کے انداپور تحصیل میں اجنی ڈیم کے نزدیک مسافروں کو لے جانے والی ایک کشتی کے الٹنے کے بعد 7 افراد لاپتہ ہیں جبکہ ایک شخص تیر کر کنارے پر آ گیا. این ڈی آر ایف کی ٹیم نے لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کی کارروائی شروع کر دی ہے. بتایا گیا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے سولاپور ضلع کے کرمالہ تعلقے میں یہ کشتی الٹ گئی. اس کشتی میں 2 خواتین اور 2 بچیوں سمیت 8 افراد سوار تھے. بھارتی موسمیات محکمے نے پیشگوئی کی ہے کہ پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، اتر پردیش، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں شدید گرمی کا زور اس مہینے کی 25 تاریخ تک جاری رہے گا. موسمیات محکمے کے مطابق وسطی اور شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں اگلے چند روز تک دن کے درجہ حرارت میں رفتہ رفتہ 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوگا. ادھر انڈمان نکوبار جزائر کے کچھ اور حصوں میں اگلے 2 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کا امکان ہے. ایشین ریلے چیمپئن شپ 2024 میں بھارتی مردوں اور خواتین کی 4x400 میٹر ریلے ٹیموں نے کل تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں چاندی کے 2 تمغے جیتے. محمد انس یاہیا، ٹی سنتوش کمار، میجو چاکو کورین اور راجیو اروکیا کی مردوں کی ریلے ٹیم نے سری لنکا کی ٹیم کے بعد دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے چاندی کا تمغہ حاصل کیا جبکہ ویتنام نے کانسے کا تمغہ جیتا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان.
شکریہ اسلم. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے لوک سبھا انتخابات کی چناؤ مہم کے تحت مختلف مقامات پر ریلیاں، روڈ شو اور عوامی میٹنگیں کیے جانے کی خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ ملاپ نے لوک سبھا انتخابات کے تعلق سے وزیر اعظم کے اس بیان کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے کہ مرکز میں مضبوط حکومت بنانے کی ضرورت. جناب مودی نے بہار کے مہاراج گنج میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے فوج کے سربراہ جنرل انیل چوہان کے اس بیان کو پہلے صفحے پر خصوصیت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ تھیٹر کمان کے تحت مسلح افواج کے انضمام کے لیے مشترکہ کلچر تیار کرنے کی ضرورت.
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. لوک سبھا انتخابات کے بقیہ 2 مرحلوں کے چناؤ مہم میں اور تیزی آ گئی ہے. سرکردہ لیڈر ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ریلیاں کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر میں بڑے پیمانے پر ووٹنگ کو جمہوریت کا پیمانہ قرار دیا ہے. دفاعی عملے کے سربراہ جنرل انیل چوہان نے کہا ہے کہ مربوط تھیٹر کمان سے فوج کی تیاری اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو تقویت ملے گی. سیر و سیاحت کے فروغ سے متعلق عالمی اقتصادی فورم کے اشارے میں بھارت اب اپنی پوزیشن بہتر کرتے ہوئے 39ویں مقام پر آ گیا ہے. اور بینکاک میں ایشیائی ریلے چیمپئن شپ میں بھارتی مردوں اور خواتین کی 4x400 میٹر کی ٹیموں نے چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.